Today we're talking about preaching.
आज हम प्रचार के बारे में प्रचार करने के बारे में बात कर रहे हैं.
I've been preaching for 42 years.
मैं 42 साल से प्रचार कर रहा हूं.
And every time I come to this place.
और जब भी मैं इस स्थान पर आता हूं.
Every time.
प्रत्येक समय.
This morning.
आज सुबह.
And right now.
अभी भी.
I say this.
मैं ये बात कहता हूं.
Lord, I'm not able to do this.
प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूं कि मैं करूं.
I need your power.
मुझे आपकी सामर्थ्य की जरूरत है.
I need your grace.
मुझे आपके अनुग्रह की जरूरत है.
We must be broken men.
हमें टूटे हुए व्यक्ति होना है.
That are dependent upon God.
हमारी निर्भरता परमेश्वर पर हो.
That don't walk proudly to this place.
हम इस स्थान पे घमंड के साथ नहीं आते.
But crawl humbly.
हम नम्रता के साथ इस स्थान पे आते हैं.
Paul said, "Who is sufficient for these things?"
पौलुस कहता है, कौन इस बात के योग्य है?
We're talking about the importance of preaching.
हम प्रचार की महत्वता के बारे में बात कर रहे हैं.
And we talked about the nature or definition of preaching.
और हमने प्रचार की परिभाषा के बारे में बात की है.
Now number three.
और तीसरी बात.
I want to talk about the authority of preaching.
और प्रचार के अधिकार की हम बात करना चाहते हैं.
Where does our authority come from?
हमारे ये अधिकार कहाँ से आता है?
Does it come from ourselves?
क्या हमारे स्वयं से?
Does it come from our education?
क्या हमारे ज्ञान शिक्षा से?
Does it come from our knowledge?
क्या हमारे ज्ञान से?
Where does our authority come from?
ये अधिकार कहाँ से आता है?
Listen carefully.
ध्यान से सुनिए.
It comes from Jesus Christ.
ये यीशु मसीह से आता है.
And it comes from His Word.
परमेश्वर के वचन से आता है.
Remember what Jesus said.
याद रखिए यीशु ने क्या कहा.
Matthew 28.
मत्ती उसका 28 अध्याय.
All authority has been given to me in heaven and earth.
इस पृथ्वी स्वर्ग और पृथ्वी में सारा अधिकार मुझे दिया गया है.
Go into all the world.
समस्त संसार में जाओ.
And preach the gospel to all creatures.
सब लोगों को सुसमाचार प्रचार करो.
Where does our authority come from?
हमारे ये अधिकार कहाँ से आता है?
Jesus has died.
प्रभु यीशु मसीह मारा गया.
He has risen from the grave.
वो उस कब्र से उठा.
He is the right hand of God.
वो परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ पे बैठा है.
And he's been given all authority.
वो उसको सारा अधिकार दिया गया है.
And he tells us to go and to preach.
और वो हमसे कहता है जाओ और प्रचार करो.
Our authority is not in ourselves.
वो अधिकार हमारे अपने में नहीं है.
Our authority is not in our own power.
हमें अपनी सामर्थ्य में अधिकार नहीं है.
It's not in our education.
हमारी शिक्षा में अधिकार
नहीं है. It's not in our gift.
हमारे वरदान
We are representing Christ.
हम प्रभु यीशु मसीह को प्रस्तुत कर रहे हैं.
We have been sent by Christ.
हम मसीह के द्वारा भेजे गए हैं.
We have been appointed by Christ.
हम मसीह के द्वारा नियुक्त किए गए हैं.
We have been called by Christ.
हम मसीह के द्वारा बुलाए गए हैं.
And we speak with authority.
और हम उस अधिकार के साथ बोलते हैं.
Not our own authority.
अपने स्वयं का अधिकार के साथ.
Not our own opinion.
हमें अपने विचारधारा से
बात
नहीं.
But the word of God.
लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार.
From the risen Christ.
ओ जीवते मसीह में.
Book of Hebrews.
इब्रानियों की पुस्तक.
Hebrews chapter 4.
इब्रानियों उसका 4 अध्याय.
Very familiar verse.
बहुत ही चिरपचित पद है.
Where does our authority come from?
कहां से हमारे पास ये अधिकार आता है?
It comes from the word of God.
परमेश्वर के वचन के द्वारा आता है.
Verse 12.
12 पद.
The word of God is living and active.
परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल है.
Sharper than any two-edged sword.
दो धारवाली तलवार के समान है.
Pierces far division soul and spirit.
वो प्राण और आत्मा को छेदता है.
Joint and marrow.
जोड़ों को गद्दों
को. Able to judge the thoughts and intents of the heart.
और मनुष्य के विचार और भावना को मन विचार भावना को छेदता है.
It's not your word.
ये सच वचन है.
It's not your opinion.
ये आपकी विचारधारा नहीं.
It's not your testimony.
ये आपकी साक्षी नहीं.
It's not your story.
ये आपकी कहानी नहीं.
It's not your gift.
ये आपका वरदान नहीं.
Where do we stand?
हम कहाँ पर खड़े होते
हैं? We stand behind the word of God.
हम परमेश्वर के वचन के पीछे खड़े होते हैं.
What do we speak?
हम क्या बोलते हैं?
We speak the word of God.
हम परमेश्वर का वचन बोलते हैं.
Why do we speak it?
हम क्यों इसको बोलते हैं?
Jesus Christ has sent us.
क्योंकि यीशु मसीह ने हमें भेजा है.
And we must have courage.
और हमें पास साहस होना है.
And we cannot fear man.
हम मनुष्य से नहीं भयभीत होते.
Jesus said, "Don't fear him who can kill the body."
प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो तुम्हारी देह को नाश करता है उससे मत डरो.
But we must fear God.
हमें परमेश्वर से डरना है.
And we preach in the name of Christ.
हम मसीह यीशु के नाम में प्रचार करते हैं.
Look in the book of Titus.
तीतुस की पत्री में देखिए.
Titus chapter 2.
उस ये तीतुस का दूसरा अध्याय.
Verse 11.
उसका 11 पद.
The grace of God has appeared.
परमेश्वर का अनुग्रह तो सब मनुष्य पर उद्धार के लिए प्रकट हुआ है.
And this grace teaches us.
और वो अनुग्रह में सिखाता है.
To deny ungodliness.
अभिकृति और संसार
के worldly desire.
अभिलाषाओं को.
Live sensibly, righteously, and godly.
लेकिन संयम, धार्मिकता और भक्ति का जीवन बिताएं.
Verse 14.
14 पद.
He gave himself for us.
उसने हमारे लिए अपने आप को दे दिया.
Now notice verse 15.
और 15 पद को देखिए.
These things speak and exhort and approve. With all authority.
वो ये कहता है, ये बातें कह, समझा, सिखा,
let no one disregard you.
पूरे अधिकार के साथ कोई तेरा निरादर न करने पाए.
Where is our authority?
कहाँ हमारा अधिकार है?
It is the grace of God.
ये परमेश्वर का अनुग्रह
है. It comes from Jesus Christ.
ये मसीह यीशु में से आता है.
It is the power of the Holy Spirit.
ये पवित्र आत्मा का सामर्थ है.
It is the word of God.
ये परमेश्वर का वचन है.
Your gift is not enough.
आपका वरदान काफी नहीं है.
Your words are not enough.
आपके शब्द काफी नहीं है.
Your opinion is not enough.
आपकी विचारधारा काफी नहीं है.
Where is our authority?
कहां से हमारा अधिकार है?
It is in Jesus Christ.
वो यीशु मसीह में.
What do we say?
वह जो कुछ हम कहते हैं.
The word of God.
परमेश्वर का वचन.
In the power of the Holy Spirit.
परमेश्वर पवित्र आत्मा की सामर्थ में.
The authority of preaching.
और ये प्रचार का अधिकार.
Comes from Jesus Christ.
प्रभु यीशु मसीह से आता है.
He says go.
वो जाओ.
And speak.
और बोलो.
The word of God.
परमेश्वर का वचन.
And the Spirit will help you.
और परमेश्वर का आत्मा तुम्हारी सहायता करेगा.
That is the authority of preaching.
और ये प्रचारक के अधिकार है.
The centrality of preaching.
प्रचार की केंद्रता.
The definition of preaching.
प्रचार की परिभाषा.
And the authority of preaching.
और प्रचार का अधिकार.
Now we want to ask this question.
और अब हम एक प्रश्न पूछना चाहेंगे.
What is the call to preach?
कि प्रचार की बुलाहट क्या है?
What is the gift to preach?
और प्रचार का वरदान क्या है?
Now the last time we were here, we covered that briefly.
और जब हम पिछली बार यहाँ थे, हमने संक्षिप्त में इसको देखा था.
But I want to review it again very quickly.
लेकिन बहुत शीघ्रता के साथ हम इसको देखना चाहेंगे.
The problem in many places in India.
भारत के कई सारे स्थानों में समस्या है.
Men are trying to preach.
मनुष्य प्रचार करना चाह
रहा है, haven't been called to preach,
लेकिन उनको प्रचार के लिए बुलाया नहीं गया है.
Haven't been gifted to preach.
उनको ना तो वरदान मिला है प्रचार
का. I ask you this question.
मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता
हूँ. Has God called you to preach?
क्या परमेश्वर ने आपको बुलाया क्या
प्रचार करें? Has God gifted you to preach?
क्या परमेश्वर ने आपको वरदान दिया क्या प्रचार
करें? How do you know?
आप कैसे जानेंगे?
What is the evidence?
क्या उसके प्रमाण है?
What is the characteristics of a call to preach?
एक प्रचार करने के लिए बुलाहट के क्या गुण है?
What is the evidence of a gift? To preach.
वो प्रचार करने के वरदान के क्या परिणाम है?
Let's talk about the call to preach.
वो हम उस पर बात प्रचार के ब्लड के बारे में बात करेंगे.
Let me mention several things.
हम बहुत सारी बातों को देखेंगे.
How does a man know he's called to preach?
कैसे एक व्यक्ति जान सकता है कि उसको प्रचार के लिए बुलाया गया है?
If you've already been preaching for many years,
उसका बहुत समय से आप प्रचार कर रहे हो.
And you know God has called you to preach,
उसका आप जानते हैं कि परमेश्वर आपको बुलाया है.
Then you also have another responsibility.
आपके पास दूसरी भी जिम्मेदारियां हैं.
You're to try to recognize young men.
आपको दूसरे जवान व्यक्तियों को पहचानना है.
And see if they have been called to preach.
और देखना है क्या उन्होंने उनको बुलाया.
And you have to help them develop their gifts.
आपको उनको वरदानों को बढ़ाना है.
Not just your own gifts.
केवल अपना वरदान नहीं.
You must be called.
आपको बुलाया जाना है.
And you must be able to recognize the call of God in other men's lives.
आपको दूसरे व्यक्ति के जीवन में भी परमेश्वर की बुलाहट को पहचानना है.
A lot of men say this.
और बहुत सारे लोग ये कहते हैं.
Well, I was praying.
ओ मैं प्रार्थना कर रहा था.
And it started to rain.
और बारिश होने लगी.
And the rain came down.
और बारिश नीचे आई.
And I had this warm feeling.
और मुझे एक बहुत गर्माहट महसूस हुआ.
And then it thundered.
और एकदम से एक बहुत ही भूइंकोल हुआ.
When I heard the voice of God in the thunder.
और मैंने उस थंडर बिजली की गड़गड़ाहट में आवाज सुनी.
God said, "Go preach."
और उन्होंने कहा जाओ प्रचार करो.
Is that the call of God?
ये परमेश्वर की बुलाहट है.
Listen carefully.
ध्यान से सुनिए.
If a man is called of God,
ये मैं व्यक्ति यदि परमेश्वर के द्वारा
बुलाया गया है. There are several clear evidences that are in his life.
उसके सामने उसके जीवन में बहुत ही स्पष्ट कुछ परिणाम होंगे, गुण होंगे.
Remember what we said before.
आपको याद होगा हमने पहले क्या कहा.
Number one.
पहली बात.
There is an inward burden produced by the Holy Spirit.
परमेश्वर के आत्मा के द्वारा अंदरूनी से ये एक बढ़ाया गया बोझ है.
He has a burden to preach.
उसके अंदर प्रचार करने का बोझ है.
He has a desire to preach.
उसके अंदर प्रचार करने की अभिलाषा लालसा है.
And he must preach.
और उसको प्रचार करना है.
Look in 1 Timothy.
पहला तिमोथियस.
And chapter 3.
और उसका तीसरा अध्याय.
Verse 1.
और पहला पद.
Now he's talking about elders in the church.
और वो कलीसिया में अध्यक्षों के साथ बात कर रहा है.
So this could be applicable to all preachers.
ये हम सारे प्रचारों के लिए पर लागू होता है.
Says if any man desires the office of an overseer.
और वो कोई भी यदि अध्यक्ष बनना चाहता है, अभिलाष रखता है.
It's a fine work he desires to do.
ये अच्छा कार्य जो करने के लिए अभिलाष रखता है.
He has an inward desire.
उसके अंदर एक अंदरूनी अभिलाष.
And it's produced by the Holy Spirit.
और ये अभिलाषा पवित्र आत्मा द्वारा उत्पन्न होती है.
It usually begins small.
ये आरंभ में तो बहुत छोटी होती
है.
And
it begins to grow.
लेकिन ये धीरे-धीरे बढ़ती जाती है.
But he has an inward burden.
और यदि उसके अंदर अंदरूनी से बहुत बोझ है.
He believes God has called him.
तो विश्वास करता परमेश्वर ने उसको बुलाया है.
Look in 1 Corinthians.
पहला कुरिन्थियों देखिए.
And chapter 9.
उसका नवा अध्याय.
We're talking about the call to preach.
हम उस बुलाहट की बात करें जो प्रचार करने की है.
Verse 16.
और उसका 16 पद.
I preach the gospel, I have nothing to boast of.
यदि मैं सुसमाचार प्रचार करूं तो मैंने कोई घमंड की बात नहीं.
For I am under compulsion.
कि मैं इस बात के लिए विवश हूं.
Woe to me if I preach not.
और यदि मैं सुसमाचार प्रचार ना करूं तो हाय मुझ पर.
What did Paul say?
पौलुस क्या कह रहा है?
God has moved my heart.
कि परमेश्वर ने मेरे हृदय को प्रेरित किया.
And he's put pressure upon me.
उसने मेरे अंदर विवशता उत्पन्न की है.
And I have an inward compulsion.
और मेरे अंदर एक अंदर से ये दबाव है.
And I have an inward desire.
और एक अंदरूनी अभिलाषा है, लालसा.
When I must do this.
कि मुझे ये जरूर करना है.
In the book of Romans.
रोमियो की पुस्तक.
And chapter 1.
उसका पहला अध्याय.
Paul says this.
पौलुस उसे कहता है.
Verse 14.
उसका 14 पद.
I'm under obligation to both Jews and the barbarians.
मैं यूनानी और बर्बरों के प्रति दोनों के प्रति ऋणी हूँ.
Verse 15.
जब 15 पद.
I am eager to preach the gospel to you in Rome.
और मैं तुम्हें और रोम में सुसमाचार प्रचार करने के लिए बाध्य हूँ.
Verse 16.
16 पद.
I am not ashamed of the gospel.
मैं सुसमाचार प्रचार करने में लज्जित नहीं होता.
This is an inward burden.
ये एक अंदरूनी भार है.
I am eager to preach.
मैं प्रचार करने के लिए उत्सुक हूँ.
I am under obligation.
मैं उसके बाध्यता में हूँ.
I am not ashamed.
मैं लजाता नहीं हूँ.
When God calls a man to preach,
जब परमेश्वर किसी मनुष्य को बुलाता प्रचार करने के लिए,
he's like Jeremiah.
वो यर्मिया के समान.
Chapter 20.
उसका 20 अध्याय.
I said I would not speak anymore.
ओ मैंने तो कहा था कि मैं नहीं प्रचार करूँगा.
But God's word was like a burning in my bones.
लेकिन परमेश्वर का वचन मेरे हृदय में अग्नि के समान जल रहा है.
I had to speak.
मुझे बोलना है.
If a man is called,
यदि एक मनुष्य बुलाया गया,
the first characteristic,
पहली जो गुण है,
he has an inward burden,
उसके अंदर अंदरूनी से बाहर होगा,
an inward compulsion,
और उसके अंदर अंदर से दबाव होगा,
an inward desire,
अंदर एक इच्छा होगी,
produced by the Holy Spirit,
और वो सब कुछ परमेश्वर के पवित्र आत्मा द्वारा होगा,
usually over time,
और धीरे-धीरे उस कुछ समय बाद,
he doesn't call himself.
वो अपने आप को नहीं बुलाता.
He's called by God.
वो परमेश्वर के द्वारा बुलाया गया है.
If a man is called by God,
और जो मनुष्य परमेश्वर द्वारा बुलाया गया है,
he first puts this burden in his heart.
परमेश्वर उसके हृदय में बोझ डालता है.
At first it may be very small.
हो सकता है वो आरंभ में बहुत छोटा हो.
But then it grows.
धीरे-धीरे बढ़ता जाता है.
And he cannot ignore it.
और तब उसको वो टाल नहीं सकता.
It begins to burn in his bones.
उसके हृदय में उसके हड्डियों में जलने लगता है.
That's the first characteristic.
ये पहला चरित्र है, गुण है.
Do you understand what we say?
जो हम कह रहे हैं कि आप समझ रहे हैं.
But that's not enough.
लेकिन ये काफी नहीं है.
Many men think they're called to preach.
बहुत सारे लोग सोचते हैं कि प्रचार के लिए बुलाए गए.
They go to church.
वो कलीसिया में जाते हैं.
They listen to the preacher.
वो प्रचारक को सुनते हैं.
And they say this.
और वो ये कहते हैं.
I can do that.
मैं कर सकता हूँ.
When I stand right here,
और जब मैं इस यहाँ पर
everyone will be looking at me.
कोई सब मुझे देख रहे हैं.
And they will think I am very important.
और तब वो सोचेंगे मैं बहुत महत्वपूर्ण हूँ.
And they have the wrong motive.
और तब उनके पास गलत धारणा है.
But if a man's called to preach,
लेकिन यदि किसी को बुलाते हैं प्रचार की,
he has two conflicting emotions, two different emotions.
तो उनके पास तो विरोधाभास की भावनाएं होंगी.
He says I must preach.
और ये कहेगा मैं प्रचार जरूर करूंगा.
Then he says I can't preach.
और मैं प्रचार नहीं कर सकता.
I must preach.
मुझे प्रचार करना है.
But I can't do it.
पर मैं नहीं कर सकता.
And if God's called you to preach,
यदि परमेश्वर ने आपको प्रचार करने बुलाया है,
you say with Paul,
और वो पौलुस के साथ
कहते हैं, who is sufficient for these things?
कौन इस सारी बातों में परिपूर्ण या योग्य है?
But I must do it.
लेकिन मुझे अवश्य करना है.
That is the first thing.
पहली बात.
But that's not enough.
लेकिन ये काफी नहीं है.
Inward burden is not enough.
अंदरूनी भार ही काफी नहीं.
Number two.
दूसरी बात.
There is outward character.
ये बाहरी जो चरित्र है वो दिखाई देना है.
That qualifies him to preach.
वो उसको इस योग्य बनाते हैं कि वो प्रचार करे.
Some men have a gift to speak.
कुछ लोगों के सामने बोलने की.
But they don't have a good character.
लेकिन उनके पास अच्छा चरित्र नहीं है.
Some men have intelligence.
उसके बाद बुद्धिमानता तो है.
But they don't have a good example.
लेकिन उनके पास अच्छा उदाहरण नहीं है.
Some men can stand up and talk.
कुछ लोग खड़े होकर बोल सकते हैं.
But they are not a good testimony.
लेकिन उनकी अच्छी साक्षी नहीं है.
If God calls a man to preach,
यदि किसी मनुष्य को परमेश्वर
He gives him an inward burden.
वो उनके अंदर बात आता है.
And He gives him true character.
और उसको वो एक सच्चा चरित्र भी देता है.
First Timothy and chapter 3.
पहला तीमुथियुस उसका तीसरा अध्याय.
What does Paul say?
पौलुस क्या कह रहा है?
If you're going to be a pastor,
यदि आप पास्टर,
if you're going to be a preacher,
अगर प्रचारक होना चाहते हैं,
you cannot call yourself.
आप अपने आप को अपनी बुला नहीं सकते.
You must meet the qualifications.
आपको उस योग्यता को पूरा करना है.
Now the last time we were together, we looked at these qualifications.
जब यहाँ पर हम थे पिछली बार हमने इन योग्यता को देखा था.
Paul mentions about 14 or 15 different things.
और पौलुस 14-15 विभिन्न बातों को दिखाता है.
But what is his emphasis?
लेकिन उसका जोर क्या है?
He emphasizes four things.
चार बातों पर जोर देता है.
Life,
जीवन.
Family,
परिवार.
Gift,
वरदान.
Doctrine,
शिक्षा.
Yeah. He must have a good life.
उसके पास अच्छा जीवन होना है.
He must have a good family.
उसका अच्छा परिवार होना है.
He must have a clear gift.
उसके पास स्पष्ट वरदान होना है.
And he must have right doctrine.
उसके पास सही शिक्षा होनी है.
And if God calls you to preach,
यदि परमेश्वर ने आपको बुलाया है प्रचार करने के लिए,
gift is not enough.
वरदान काफी नहीं है.
Inward burden is not enough.
अंदरूनी बाहर काफी नहीं है.
You must meet the qualification.
आपको उस योग्यता को पूर्ण करना है.
And there's a very important word in those verses.
और इन पदों में बहुत महत्वपूर्ण शब्द पाए जाते हैं.
You remember what that word was?
वो कौन सा शब्द था? क्या आपको याद है?
He must have these qualifications.
उसके पास उनके अंदर ये गुण या योग्यता होना अनिवार्य है.
He doesn't say maybe have them.
उनका हो ये होने हो सकता है ये हो.
He says he must have them.
उनके अंदर ये होना है.
If God has called you to preach,
यदि परमेश्वर ने आपको
बुलाया, if you're going to stand in this place,
और यदि आप यहाँ पर खड़े होना चाहते
हैं, it is a holy place.
ये पवित्र स्थान है.
The problem with many preachers in India,
भारत में बहुत सारे प्रचारक,
they stand in this place,
यहाँ पर वो खड़े तो होते हैं,
but their life and character is not consistent.
प्रभु उनका जीवन और उनका उनकी साक्षी निरंतर एक सी नहीं है.
They can talk some beautiful words.
वो बहुत ही अच्छे शब्द बोल सकते हैं.
And they can move people.
लोगों को प्रेरित कर सकते हैं.
But they're inconsistent in their life.
लेकिन परमेश्वर के साथ हमेशा मसीह में स्थिर बना रहना.
What does Paul tell Timothy?
पौलुस तीमुथियुस को क्या कह रहा है?
Second Timothy.
दूसरा तीमुथियुस.
Chapter 2.
उसका दूसरा अध्याय.
In a big house there are many vessels, some for common use, some for special use.
वो कहता है कि एक घर में बहुत सारे बर्तन हैं, पात्र हैं. कुछ अच्छे इस्तेमाल के लिए, कुछ साधारण इस्तेमाल के लिए.
And a man must cleanse his life if he's going to be useful.
यदि वो मनुष्य उस घर का उपयोगी पात्र बनना चाहता है, तो उसको साफ होना है.
The church is the house of God.
कलीसिया परमेश्वर का घर है.
Christ is the master of the house.
उस घर का स्वामी मसीह है.
The preachers are the vessels.
और प्रचारक जो हैं वो पात्र हैं.
And a man must be a clean vessel.
और वो उस प्रचारक को एक साफ पात्र होना है, बर्तन हो रहा है.
If the master is going to use him, he must have good character.
यदि आपको स्वामी को यूज इस्तेमाल करना है, तो आपको एक अच्छा चरित्र रखना है.
We explained that the last time we were here.
जब पिछली बार हम थे, हमने उसको समझाया था.
But if God calls a man to preach,
यदि परमेश्वर ने आपको बुलाया प्रचार करने के लिए,
when everyone looks at his life,
जो आपके जीवन को देखता है,
they believe he's a man of integrity.
वो ये देखना चाहता है कि मनुष्य एक सत्यनिष्ठा,
he is a blameless man.
ये निर्दोष व्यक्ति है.
He's not a perfect man.
वो सिद्ध नहीं है.
But he's a blameless man.
लेकिन वो निर्दोष है.
He's a man of good character.
उसका अच्छा चरित्र है.
If you talk to his wife,
यदि वो उसके पति से बात करो,
she says, I know my husband.
वो कहेगी मैं अपने पति को जानती हूँ.
And what he is in public, he's the same way in private.
जो कुछ वो लोगों के सामने है, वही अलग अकेले में भी है.
You can talk to his children.
अगर आप उसके बच्चों से बात करें,
and they can say this.
उनके बच्चे ये कह सकते हैं,
what my father preaches in the church, he lives in the home.
मेरा पिता जो कलीसिया प्रचार करता है, वो घर में इस बात को दिखाता है.
He is a blameless man.
वो निर्दोष पुरुष है.
He's not a perfect man.
वो सिद्ध तो नहीं है.
But when you look at him,
लेकिन जब आप उसको
when
देखते
your wife looks at you,
जब आपकी पत्नी आपको
when
देखती
your children
है,
look at
जब
you,
आपके बच्चे आपको देखते
when
हैं,
the church looks at him,
जब आपके कलीसिया आपको देखती है,
they say this,
वो ये कहते हैं,
I know that man,
मैं इस तक को जानता
हूँ, he's a blameless man,
ये निर्दोष है,
yes he has faults,
हाँ ये जरूर उसके अंदर,
but he is a consistent blameless man,
लेकिन उस वो निरंतर एक निर्दोष व्यक्ति है,
and if you are called of God,
यदि आप परमेश्वर के द्वारा बुलाए
गए, all the church will rise up together and say he's a holy man.
और तो सारा कलीसिया खड़े होकर कहेगी, नहीं ये व्यक्ति ये सेवक पवित्र सेवक है.
And if the church can't say that,
यदि कलीसिया नहीं कह सके,
you're not called of God.
आप परमेश्वर के द्वारा बुलाए नहीं.
You may have gone to Bible school.
आप उस्ताद बाइबल स्कूल में गए.
You may have gift.
उस्ताद आपके पास वरदान.
You may have right theology.
उसके पास सही शिक्षा भी हो.
You may be a powerful man.
वो बहुत सामर्थ्य व्यक्ति हो.
But if you don't have character,
लेकिन आपके पास अगर चरित्र नहीं है,
sit down.
बैठ जाइए.
Because God says this.
क्योंकि परमेश्वर कहता है,
if you're called to preach,
यदि आप प्रचार के लिए बुलाए गए,
you will fulfill these qualifications.
आप इन योग्यताओं को पूरा करेंगे.
That's the second requirement.
यह दूसरी आवश्यकता है.
If a man is called,
यदि मनुष्य बुलाया गया है,
he has inward burden.
उसके अंदर अंदरूनी भार है.
And he has true character.
उसके पास सच्चा चरित्र है.
He is qualified to stand in this place.
इस स्थान पर वो खड़े होने के लिए योग्य है.
But that's not enough.
लेकिन ये काफी नहीं है.
If a man is called of God,
अरे मनुष्य परमेश्वर के द्वारा बुलाया गया है. तीसरा,
he has clear, obvious gift.
उसके पास स्पष्ट खुला वरदान है.
He has the gift to teach.
उसके पास शिक्षा देने का वरदान है.
Look in 1 Timothy.
पहला तिमोथियस.
And chapter 3.
उसका तीसरा अध्याय.
Paul's main emphasis is character.
पहला पौलुस का मुख्य जो ध्यान है वो चरित्र है.
But in verse chapter 3 verse 2.
दूसरा पद.
Look at the end of the verse.
उसके
what does it say?
भाग में क्या कह रहा, दूसरे पद के अंतिम भाग में.
He must be able to teach.
वो शिक्षा देने में निपुण हो.
He has the gift to communicate.
उसके पास ये वरदान हो कि लोगों के सामने सही रीति से शिक्षा दे सके.
Now when God calls a man to preach,
यदि मनुष्य को परमेश्वर ने मनुष्य को बुलाया प्रचार करने,
He gives him the gift to preach.
उसको वो प्रचार करने का वरदान देता है.
1 Peter
पहला पत्रा,
chapter 4,
उसका 14 अध्याय.
As each man has received a gift,
कि प्रत्येक व्यक्ति को परमेश्वर ने वरदान दिए,
let him use it in the service of God.
वो परमेश्वर की सेवा के लिए उसको उपयोग करे.
If a man speaks, let him speak the word of God.
यदि मनुष्य कोई बोलता है तो परमेश्वर के वचन को बोले.
If a man serves, let him do it by the strength that God gives.
और अगर वो कोई सेवा करता है तो उसको सेवा करने के द्वारा बलवंत बने.
Now there are different gifts in the body of Christ.
परमेश्वर की कलीसिया में विभिन्न प्रकार के वरदान हैं.
There are public gifts.
खुले रूप में.
There are private gifts.
और एक एकांकी का वरदान.
There are speaking gifts.
एक बोलने वाली.
There are serving gifts.
और एक सेवा करने वाली वरदान.
There are different gifts in the body of Christ.
परमेश्वर की कलीसिया में देह में विभिन्न वरदान हैं.
When a man is born again,
और यदि व्यक्ति ने नया जन्म,
God gives him spiritual gift.
परमेश्वर उनको आत्मिक वरदान देता है.
And that gift is to be used in serving the church of God.
और वो वरदान इसलिए ताकि परमेश्वर की कलीसिया में सेवा की जाए.
All gifts are important.
हर एक वरदान महत्वपूर्ण है.
Paul said, if a man says, well, I'm just a foot, I'm not important.
वो अगर कोई व्यक्ति कहे केवल मैं तो पांव हूं इसलिए मैं महत्वपूर्ण नहीं हूं.
One body,
एक देह,
many members,
बहुत सारे सदस्य,
they all work together,
एक साथ मिलकर काम करते हैं.
And all men have a gift,
हर एक जन के पास वरदान है.
And if God has called you to preach,
और यदि परमेश्वर ने आपको प्रचार करने बुलाया,
He will give you the gift to preach,
तो आपको वो प्रचार करने की वरदान देगा.
Look in 2 Timothy,
दूसरे तीमोथियस में आइए.
Chapter 1,
उसका पहला अध्याय,
and verse 6,
उसका 6 पद.
I remind you to kindle afresh the gift of God that is in you.
वो कहता है कि मैं स्मरण दिलाता हूं कि परमेश्वर के उस वरदान को प्रज्वलित कर दे.
God gave Timothy a gift.
पौलुस ने, परमेश्वर ने तिमोथियस को वरदान दिया.
Look in 1 Timothy,
पहला तिमोथियस,
chapter 4,
उसका 4 अध्याय,
and verse 14,
उसका 14 पद.
Do not neglect the spiritual gift within you.
जो कुछ तुम्हें आत्मिक वरदान दिए उसको तिरस्कृत मत करो.
It was given by the laying on of hands through the elders.
जो प्राचीनों के द्वारा हाथ रखने द्वारा मिले हैं.
When Paul was going through Asia,
जब पौलुस एशिया के द्वारा चला जाता था,
John Mark left him.
मार्कुस, मरकुस और जॉन ने ले
छोड़ दिया. And he found another young man.
उसने अपने साथ एक और व्यक्ति को पाया.
His name was Timothy.
उसका तिमोथियस नाम था.
His mother was a Jew.
उसकी माता तो यहूदी थी.
His father was a Gentile.
उसके पिता अन्य जाति था.
And he had a good reputation in the church.
लेकिन वो कलीसिया में उनका अच्छा नाम था.
And the church and Paul laid their hands upon him.
और कलीसिया ने और पौलुस ने उसके ऊपर सिर पे हाथ रखा.
And they sent him out with Paul.
और तब पौलुस रात उन्होंने भेज दिया.
And he developed a spiritual. He was given a spiritual gift.
और जो कुछ भी आत्मिक वरदान उसको मिला था उसने उसको बढ़ाया.
And he was to use that gift.
और वो अब इस वरदान को यूज कर रहा है, उपयोग कर रहा है.
Now listen carefully.
ध्यान दीजिए.
If a man is called to preach,
और यदि एक व्यक्ति प्रचार करने बुलाया गया,
he has an inward burden from the Holy Spirit.
पवित्र आत्मा द्वारा उसके अंदर अंदरूनी भार होगा.
He has the necessary character according to the Word of God.
परमेश्वर के वचन के अनुसार उसका उस प्रकार का चरित्र होगा.
And he has a clear, obvious gift.
और उसके बाद स्पष्ट खुला वरदान होगा.
Now a gift is like a muscle.
और वो जो वरदान है वो मसल के समान है.
The more you exercise it, the bigger it gets.
जितना अधिक आप उसको एक्सरसाइज करते ही मसल उतनी मरती जाती है.
But listen carefully.
लेकिन ध्यान दीजिए.
You can't teach a frog to fly.
लेकिन आप एक मेंढक को उड़ना नहीं सिखा सकते. मेंढक को उड़ना नहीं सिखा सकते.
You take a frog.
आप मेंढक को ले लीजिए.
You pick him up.
उसको पर ले लीजिए.
You throw him in the air.
उसको हवा में फेंकिए. वो फिर से नीचे आ जाएगा.
You pick him up again.
फिर से उठाइए.
You throw him in the air.
फिर फेंकिए. फिर वो नीचे आ जाएगा.
You pick him up again.
फिर से उठाइए.
You throw him in the air.
और फिर वो मर जाएगा.
You can't teach a frog to fly.
एक मेंढक को उड़ना नहीं सिखा सकते.
And if a man doesn't have the gift to preach, you can't teach him to preach.
और यदि एक व्यक्ति के अंदर प्रचार शिक्षा देने की गिफ्ट वरदान नहीं है, आप उसको नहीं सिखा सकते.
Now that gift may be small.
हो सकता है वरदान छोटा हो.
You may be able to barely see it.
हो सकता है थोड़े से आप उसको देख रहे हो.
But if he exercises it.
लेकिन अगर वो उसको एक्सरसाइज करता है.
If you give him a counsel and direction.
आप उसको अगर निर्देश देते हैं, उसको सम्मति देते हैं.
He can begin to develop his gift.
वो अपने वरदान को बढ़ाता चला जाता है.
And like a little bird.
एक छोटी चिड़िया के समान.
First learning to fly.
वो कैसे इसमें उड़ना सीखती है.
He jumps out of the nest.
वो जाल से निकलती है और धीरे धीरे बढ़ती है.
He gets up again.
और फिर खड़ी होती है, फिर थोड़ा आगे बढ़ती है, फिर गिरती है.
But what happens?
लेकिन क्या होगा?
One week later.
एक हफ्ते बाद वो उड़ जाती है, उड़ने लगती है.
Why?
क्यों?
He's got wings.
उसके पास वो पर है.
God gave him the gift to fly.
उसको परमेश्वर ने वरदान दिया कि उड़ सके.
And if God calls a man to preach,
अगर परमेश्वर ने आपको प्रचार करने के लिए बुलाया है,
he has the gift.
आपके पास वो वरदान होना है.
All right, now let's ask this question.
मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ.
What is the gift to preach?
कि प्रचार करने का वरदान क्या है?
When a man has the gift to preach,
यदि एक व्यक्ति के पास प्रचार करने का वरदान हो,
it affects four areas in his life.
उसके जीवन में चार क्षेत्रों में प्रभाव डालेगा.
Remember what I told you before.
मैं याद रखे मैंने पहले आपके बोला था.
When a man has the gift to preach,
अगर वो उसके पास प्रचार का वरदान है,
it affects four areas in his life.
उसके जीवन में चार क्षेत्र पे प्रभाव डालेगा.
His mind,
उसका मस्तिष्क.
His heart,
उसका हृदय.
His mouth,
उसका मुंह.
And his life,
उसका जीवन.
What do we mean?
इसका मतलब क्या है?
Let's review this very quickly.
इसको ध्यान से दोहराएं, ध्यान से.
When a man has the gift to preach,
जब एक व्यक्ति के पास प्रचार करने का वरदान है,
God touches his mind.
परमेश्वर उसके मस्तिष्क को छूता है.
Now all Christians have the Holy Spirit.
हर एक मसीह के पास पवित्र आत्मा है.
All Christians can understand the word of God.
हर मसीह परमेश्वर वचन को समझ सकता है.
But when a man has the gift to preach,
लेकिन एक व्यक्ति जिसके पास प्रचार करने का वरदान है,
he has a special ability from God.
वो परमेश्वर की ओर से उसको विशेष योग्यता मिलती है.
To see,
देखे.
And to understand,
वो समझे.
And to order,
और उसको क्रम में लाए.
Paul said this.
पौलुस ये कहता है.
Ephesians chapter 3.
इफिसियों का तीसरा अध्याय.
You understand my insight into the mystery of God.
कि तुम मेरे भीतरी मस्तिष्क को वो परमेश्वर के रहस्य में देख सकते हो, समझ सकते हो.
Now Paul was an apostle.
पौलुस एक अपोस्टल था.
He had a special revelation.
वो प्रेरित था, उसको एक विशेष प्रकाशन मिला था.
But if God calls a man to preach,
और परमेश्वर जब किसी को बुलाता है,
he has the ability to think.
वो सोचने के पास उसकी योग्यता होती है.
Now the problem with many people in India.
बहुत सारे लोगों के साथ भारत में जो समस्या है.
Indian education doesn't teach men to think.
जो भारतीय शिक्षा है, मनुष्य को सोचने की शिक्षा नहीं देती.
What do they do?
वो क्या करते हैं?
They write down things.
वो लिखते हैं.
They memorize it.
वो याद कर रखते हैं.
And on the test.
और टेस्ट में आप लिख के दे देते हैं, रखते हैं और लिख देते हैं.
They don't learn to think.
वो ये बात को नहीं सीखते कि कैसे विचार करें, सोचें.
It's the same way in China.
ये चाइना में भी इसी तरह से है.
Just memorize a few things.
कुछ चीजों को याद कर लेते हैं.
And hurry to the test before you forget it.
और उससे पहले अपने जब एग्जाम हो रहा है,
try to write it down.
और उसके बाद लिखते हैं.
But when God calls a man to preach,
लेकिन जब एक व्यक्ति परमेश्वर किसी व्यक्ति को प्रचार करने
बुलाता है, mind to think,
उसको वो मस्तिष्क देता है कि वो सोचे.
He can look at the word of God,
वो परमेश्वर के वचन की ओर देखता है.
He can look at a verse,
वो पद को देखता है.
He can look at a passage,
वो पैसेज को देख सकता है.
He can see its basic idea,
पूरा एक मुख्य विचारों को देखता है.
He can see its basic order,
वो उस क्रम में उसको ला सकता है.
He can put it together,
उसको साथ रख सकता है.
God has given his spirit to all believers,
परमेश्वर ने सबको को
But when God calls a man to preach,
लेकिन यदि परमेश्वर ने प्रचार करने बुलाया,
he touches his mind in a special way.
वो उसके मस्तिष्क को एक विशेष प्रकार का बनाता है.
That doesn't mean he's smarter than people.
इसका मतलब ये कि वो बहुत दूसरे व्यक्ति से
बहुत अच्छा है. That doesn't mean he's better than people.
दूसरों से लोगों से बहुत अच्छा है.
He can't be proud.
वो उसको प्राण घमंड
नहीं होना है. He has a great responsibility.
उसके पास एक बहुत बड़ा महत्व जिम्मेदारी है.
Every All Christians can understand the Bible.
सब परमेश्वर के वचन को समझते हैं.
But a man called to preach.
लेकिन जिनको बुलाया प्रचार करने के लिए.
He can see order.
वो उसको क्रम में देखता
है. He can see development.
वो किस प्रकार से उसको बढ़ाता है.
He can put pieces together.
उन टुकड़ों को वो एक साथ लाके रखता है.
That is a gift from God.
ये परमेश्वर की ओर से वरदान है.
And when he stands up to communicate.
और जब वो खड़ा होता है ताकि उसका वो लोगों
को सिखाए. There is order.
उसमें वहां क्रम पाया था.
There is a basic structure.
वो वहां पर एक ढांचा बनाया
था. There is clear development.
वो एक स्पष्ट विकास दिखाई देता है.
So that a little 10-year-old girl,
वो 10 साल की जो बच्ची है,
she can follow him.
और उसको भी वो समझ सकती है.
And when she goes out the door,
और जब वो दरवाजे के बाहर जाती है,
and her daddy asks her a question,
और उसका पिता उससे प्रश्न पूछता है,
what did the preacher preach on today?
प्रचारक ने क्या प्रचार किया?
She can say, well, he said this.
वो कह सकती है कि हाँ ये.
Then he said this and this and this.
उसने यही कहा.
If it's not clear in your mind,
यदि वो आपके स्वयं के मस्तिष्क में स्पष्ट नहीं है,
it won't be clear in your mouth.
यदि आपके मुंह से वो स्पष्ट नहीं है,
if it's not clear in your mouth,
अगर आपके मुंह में स्पष्ट साफ नहीं है,
it won't be clear in their ears.
उनके कानों में भी स्पष्ट नहीं
है. When a man is called to preach,
जब एक व्यक्ति प्रचार करने
बुलाया जाए, God gives him the gift to preach.
तो परमेश्वर उसको प्रचार का वरदान देता
है. And it affects his mind.
उसके मस्तिष्क पे प्रभाव डालता है.
It can be developed.
वो धीरे धीरे बढ़ता है.
Number two.
दूसरी बात.
It affects his heart.
उसके हृदय पे प्रभाव डालता है.
All Christians should love the Bible.
हर एक को परमेश्वर के मसीह को परमेश्वर के वचन से प्यार करना है.
But if a man is called to preach,
यदि एक व्यक्ति को प्रचार करने बुलाया गया है,
he's got one book.
उसके पास एक किताब है.
And he loves this book.
उस पुस्तक से वो प्यार करता
है. And he lives in this book.
इसी पुस्तक में रहता है.
And he meditates on this
book. उस पर मनन करता है.
And he knows this book.
इस पुस्तक को जानता है.
Remember what it said about Ezra.
Ezra 7:10. 7:10.
Yeah. Ezra, yes.
Yes.
What did it say about Ezra?
Ezra के बारे में क्या लिखा है?
He set his heart to study the word of God.
उसने अपने परमेश्वर के वचन को अध्ययन करने में.
Then to do it.
और उसको करने में.
Then to teach it to
Israel. और उसको सिखाने में मन लगाया.
When God calls a man to preach.
और जब मनुष्य को परमेश्वर प्रचार करने
लगता है. He touches his heart.
उसको हृदय को छूता है.
He loves this book.
परमेश्वर के वचन से प्यार करता
है. He commits his heart to study this
book. वो अपने हृदय को समर्पित करता है इसको अध्ययन करने में.
Other men are making money.
दूसरे लोग पैसा बना रहे हैं.
He's studying this book.
ये परमेश्वर के वचन का अध्ययन करता
है. Other men are watching TV all the time.
वो सारे समय में टीवी देख
रहे हैं. He's living in this book.
वो इस पुस्तक में है.
Other men are out doing other things.
वो दूसरे व्यक्ति दूसरे कुछ और कर रहे हैं.
He's living in this book.
ये इस पुस्तक में है.
Why?
क्यों?
Because God has touched his heart.
क्योंकि परमेश्वर उसके हृदय को छुआ है.
And he loves this book.
वो इस पुस्तक से प्यार करता है.
Because this is the book from God.
क्योंकि ये पुस्तक परमेश्वर से मिली है.
Psalm 119.
परमेश्वर भजन संहिता 119.
Oh how I love thy law.
मैंने तेरी व्यवस्था से कैसे प्रीति की
है. It is my meditation all the day.
पूरे संपूर्ण दिन ये मेरा मनन का स्थान
है. When God calls a man to preach.
जब परमेश्वर एक मनुष्य को प्रचार के लिए बुलाता
है. He touches his mind.
उसके मस्तिष्क को छूता है.
And he touches his heart.
उसके हृदय को छूता है.
He has an affection, a love for this book.
इस पुस्तक के कारण के लिए उसका प्रेम और खिंचाव बढ़ जाता है.
And many people believe Ezra wrote Psalm 119.
और कितने लोग इस बात पर विश्वास करते हैं कि एज्रा ने भजन संहिता 119 लिखा है?
Maybe David wrote it.
हो सकता है दाऊद ने लिखा है.
Maybe Ezra wrote it.
हो सकता है एज्रा ने लिखा
है. But whoever wrote it loved this book.
लेकिन जिसने भी लिखा हुआ इस पुस्तक से प्रेम करो.
And he set his heart to study the word of God.
और उसने अपने इस बात को कहा कि इस हृदय से परमेश्वर से प्रेम वचन से प्रेम करो.
And when God gives a man the gift to preach,
यदि परमेश्वर किसी को वरदान देता है,
he touches his mind,
वो उसके मस्तिष्क को छूता है,
and he touches his heart,
उसके हृदय को छूता है.
But number three,
दूसरी बात,
he touches his mouth,
उसके मुंह को छूता है.
Remember Isaiah chapter 6,
याद करिए यशायाह उसका 6
अध्याय. The angel came and put the burning coal on Isaiah's lips.
वो स्वर्गदूत आया और उसने एक अंगारा लेकर यशायाह के मुंह में छू दिया.
And he took his sin away.
उसके पाप को हटा दिया.
And he told him to speak.
और उसने कहा बोलो.
Remember Apollos. Apollos.
Apollos. Apollos, yes.
What does it say about Apollos?
Apollos ke liye kya kaha gaya hai?
He was mighty in the scriptures.
Wo parmeshwar ke vachan ka janne wala tha.
And he was an eloquent man.
Wo ek eloquent tha.
He had the ability to speak.
Wo uske andar yogyata thi ki wo bol sake.
Some men stand up to preach.
Kuch log khade hote hain prachar karne
ke liye. They're like this.
Wo iska karte hain.
Brethren,
वो बोलना तो चाहते हैं लेकिन आप समझ रहे क्या हो रहा है हाँ कहां पर है उनको नहीं मालूम.
But when God gives a man the gift to speak,
लेकिन जब परमेश्वर किसी मनुष्य को बोलने का वरदान देता है,
he touches his mouth,
उसके मुंह को छूता है.
And he is able to put together words and thoughts.
तो वो सारी चीजों को विचारों को और वचनों को क्रम में रखता है.
He may be an uneducated man.
हो सकता है वो ज्यादा पढ़ा लिखा ना हो.
He may be a quiet man.
हो सकता है वो शांत हो.
But when he stands up to speak,
लेकिन वो जब खड़ा हो जाता है,
speech comes out of his mouth like water out of a faucet.
और वो एक सोते के समान निकलने वाला पानी के समान वो बातें निकलती हैं.
Why?
क्यों?
Because God has touched his mouth.
क्योंकि परमेश्वर ने उसके मुंह को छुआ है.
And if a man stands up to speak,
और जब मनुष्य खड़ा होता है बोलने के लिए,
and he's always searching for words,
और जब वो केवल वचनों को या शब्दों को इधर उधर खोज रहा है,
and he starts, he's
वो समझ भी नहीं पा रहा उसको क्या बोलना चाहिए, उसको समझ नहीं आ रहा, याद कर रहा है, सोच रहा है.
Maybe God has not called him to preach.
हो सकता है परमेश्वर ने उसको प्रचार करने नहीं बुलाया है.
Now it's not his fault.
ये उसकी त्रुटि नहीं है.
You can't teach a frog to fly.
आप एक मेंढक को उड़ना नहीं सिखा सकते.
Men have different gifts.
मनुष्य के पास अलग अलग वरदान है.
And if God has called a man to preach,
यदि परमेश्वर ने मनुष्य को प्रचार करने बुलाया है,
he touches his mouth,
वो उसके मुंह को छूता है.
I became a Christian when I was 20 years old.
मैं जब 12 साल का था तब मैं मसीह बना.
And I had probably never spoken two or three complete sentences and put them together in my whole life.
मैंने पूरे जीवन में कभी भी उस समय तक दो तीन सेंटेंस को साथ मिलाकर प्रचार नहीं किया.
This is the way I communicated.
लेकिन इस तरह से मैं बोलता हूँ. उस समय बोलता हूँ.
Yes.
जी हाँ.
Okay.
यहाँ जी हाँ.
Mm-hmm.
हाँ. ऐसे मैं बोलता था.
But in 1970.
लेकिन 1970 में.
On October the 25th,
25 अक्टूबर को,
God touched my mouth,
प्रभु ने मेरे मुंह को छुआ,
and I began to speak,
मैं बोलने लगा, आलम हो गया,
and I couldn't believe it,
मैं विश्वास नहीं कर सका,
I was listening to myself talk,
मैं अपने आप स्वयं अपनी आवाज को उस बात को सुन रहा था,
and on that day,
उस दिन,
God gave me a gift.
परमेश्वर ने मुझे वरदान दिया.
I didn't want to preach.
मैं प्रचार करना नहीं चाहता था.
I didn't know anything about preaching.
मैं प्रीचिंग के बाद प्रचार के बारे में कुछ नहीं
जानता. God came out of heaven.
परमेश्वर स्वर्ग से आया.
And he touched my heart.
उसने मेरे हृदय को छुआ.
And he touched my mind.
उसने मेरे मस्तिष्क को छुआ.
And he loosened my tongue.
और मेरी जो जीभ थी उसने उसको ढीला किया.
And a quiet, shy, silent man began to speak. एक ऐसा व्यक्ति
जो बिल्कुल शांत शर्मिले स्वभाव का व्यक्ति जो अकेला रहना चाहता.
And when a man has the gift to preach,
और जब परमेश्वर मनुष्य के पास प्रचार का वरदान होता है,
God touches his mouth,
परमेश्वर उसके मुंह को छूता है.
Number four,
चौथी बात,
when man has the gift to preach,
जब एक मनुष्य के पास प्रचार का वरदान है,
God touches his life.
उसके जीवन को छूता है.
What do we mean?
इसका मतलब क्या है?
We mean he's willing to make any sacrifice to preach the word of God.
इसका मतलब यह है कि वो व्यक्ति किसी भी प्रकार के त्याग को करने के लिए अपने जीवन में तैयार रहता है.
He realized God has called him.
वो ये मैसेज करता परमेश्वर ने उसको बुला दिया है.
He no longer belongs to himself.
अब वो स्वयं अपना नहीं है.
He cannot do his own will.
अपनी स्वयं की इच्छा पूरी नहीं कर सकता.
He cannot live like other men.
दूसरों के समान वो जीवन नहीं
व्यतीत करता. He's been set apart by God.
परमेश्वर की ओर से वो अलग किया गया है.
And his life is characterized by self-denial.
उसके अपने स्वयं से इनकार करने का जीवन.
His life is characterized by discipline.
और ये अनुशासन के द्वारा.
His life is characterized by sacrifice.
उस त्याग के द्वारा जीवन से दिखाई देता है.
Other men do other things.
दूसरे लोग दूसरी चीजें करते हैं.
He does one thing.
ये एक काम करता है.
Other men have other desires.
दूसरे लोगों के पास दूसरी भी इच्छाएं.
He has one desire.
उसके पास एक ही अभिलाषा है.
He is a man of self-denial.
उसके पास स्वयं का इनकार करने
वाला. He is a man of sacrifice.
वो त्याग करने वाला जीवन.
He is totally committed to God.
वो पूरी तरह परमेश्वर के लिए.
He does not have a divided heart.
उसके पास विभाजित हृदय नहीं है.
He is totally consecrated to God.
वो पूरी तरह परमेश्वर के लिए पवित्र किया गया है.
And when God calls a man to preach,
और यदि परमेश्वर किसी बुलाता प्रचार करने के लिए,
He gives himself completely to these things.
वो पूरी तरह अपने आप को उस चीज के लिए दे देता है.
Now he may have to work to make a living.
उसका अपने जीविका के लिए उसको कार्य करना हो.
But his heart and his life are committed to the kingdom of God.
लेकिन उसका जीवन और उसका हृदय जो है परमेश्वर के राज के लिए समर्पित है.
He's not living for money.
वो पैसे के लिए नहीं रह रहा.
He's not living for reputation.
वो अपने नाम के लिए नहीं रह रहा.
He's not living for possessions.
वो अपने पद के लिए नहीं रह रहा.
He's not living to be famous.
वो बात प्रसिद्ध होने के लिए नहीं रह रहा.
He has given all that up.
वो सब कुछ को उसने दे दिया.
And he realizes this.
और वो ये महसूस करता है.
God calls him to preach.
यदि परमेश्वर ने उसको बुलाया प्रचार करने के लिए.
It's like when God called Paul.
जैसे पौलुस को परमेश्वर ने बुलाया.
And when Paul was in Damascus.
जब वो दमिश्क में था
पौलुस. And he was blinded.
वो अंधा हो गया.
And God sent Ananias to him.
अननिया को उसके पास भेजा.
And what did God say to Ananias?
अननिया के द्वारा परमेश्वर ने क्या कहा?
Go.
जाओ.
Pray for him.
उसके लिए प्रार्थना करो.
I have chosen him.
मैंने उसको चुन लिया है.
I will show him how much he must suffer.
और मुझे मैं उसको दिखाऊंगा कि मेरे लिए कितना तो उसको दुख उठाना है.
And if God calls a man to preach,
यदि मनुष्य को परमेश्वर प्रचार के लिए बुलाया,
he gives up this world.
वो संसार को छोड़ देता है.
He gives up his reputation.
वो अपने नाम को छोड़ देता
है. He gives up money.
अपने पैसे छोड़ देता
है. He's not living for this life.
वो संसार के लिए नहीं.
He's living for another world.
वो दूसरे संसार के लिए.
And he takes up his cross.
वो अपने क्रूस को लेता है.
And he follows Christ.
वो मसीह के पीछे चलता है.
And he lives for the word of God.
वो परमेश्वर के वचन के लिए जीता है.
And to preach to the people of God.
लोगों को प्रचार करता है.
He is a man that has been bought with a price.
वो ऐसा व्यक्ति है जिसको कीमत देकर चुकाया गया है.
And his mind.
उसका मन.
And his heart.
उसका हृदय.
And his mouth.
उसका मुंह.
And his life.
उसका जीवन.
Have been touched by God.
परमेश्वर के द्वारा छुआ गया है.
That's the gift of preaching.
ये प्रचार के वरदान है.
So I ask you this question.
मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता
हूं. Do you have the gift to preach?
क्या आपके पास है प्रचार का?
Are you called to preach?
क्या प्रचार करने बुलाए गए?
Do you understand this book?
क्या आप इस पुस्तक को समझते हैं?
Do you love this book?
क्या आप इस पुस्तक से प्रेम करते हैं?
Do you live in this book?
क्या आप इसमें जीते हैं?
Do you understand this book?
क्या आप इस पुस्तक को समझते हैं?
Have you given up the world?
क्या आपने संसार को छोड़ दिया?
When you speak,
जब आप बोलते हैं,
Do you have some help from God?
क्या आपके पास परमेश्वर के उसको सहायता है?
Your mouth.
क्या उसने आपके मुंह को छुआ?
Has he touched your heart?
क्या उसने हृदय को छुआ?
Has he touched your mind?
क्या मस्तिष्क को छुआ है?
Are you taking up the cross?
क्या आप क्रूस उठाकर चल रहे हैं?
That's the gift to preach.
ये प्रचार की वरदान है.
When God calls a man,
और जब परमेश्वर मनुष्य को बुलाता है,
he has an inward burden.
उसके अंदर अंदरूनी बोझ है.
He has outward character.
उसके पास बाहरी चरित्र है.
And God gives him a gift.
और परमेश्वर उसको वरदान देता है.
Do you have that gift?
क्या आपके पास वो है?
Well, let's pray.
आई एम प्रार्थना करूं.